नारायण 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 कहा जाती है कि मनुष्य को हर प्रकार से अपने आप को उन्नत करना चाहिए, हर एक प्रकार से अपनी उन्नति करनी चाहिए। शारीरिक उन्नति जो शरीर से उन्नति है, इंद्रिय उन्नति जो इंद्रियों के विषय की उन्नति है, मानसिक उन्नति जो मन विषय की उन्नति, और वो भी उन्नति जो बुद्धि विषय की उन्नति। ये त्याग तो शरीर के वही खास, इसके अलावा अनेक प्रकार की उन्नतियां हैं। उनके वहां छह और प्रधान है, एक भौतिक उन्नति और एक सामाजिक उन्नति और एक व्यवहारिक उन्नति और एक नैतिक उन्नति और धार्मिक उन्नति और पारमार्थिक उन्नति। तो हर प्रकार से अपने को उन्नत बनाना चाहिए। शारीरिक उन्नति के विषय में आपको बताया जाता है, हर एक प्रकार से अपने शरीर को योग बनाना चाहिए, उन्नत बनाना चाहिए। शारीरिक उन्नति के लिए शरीर का संगठन अच्छा बने, भोजन सात्विक करना, व्यायाम करना और उत्तम आचरण करना। भोजन जो है पवित्र होए, शुद्ध होए, सात्विक होए। सात्विक भोजन के लक्षण भगवान ने गीता की सत्रह अध्याय के आठवें श्लोक में बताया है। आयु सप्तबलारोग्य सुप्रीति विवर्धना प्रत्या सुजा सुरा हिद्या हरा सात्विक प्रिया। एक ही श्लोक में 10 बार बतलाई भोजन कैसा होना चाहिए। इन सब बातों की वृद्धि करने वाला जो भोजन है वो सात्विक है। छह बात कौन सी? आयु को बढ़ाने वाला, हृदय को पुष्ट करने वाला, सत्य माने अंतर्गत आयु सत्य बल, बल को बढ़ाने वाला, आरोग्यता को बढ़ाने वाला, आयु सत्य बल आरोग्य, सुख को बढ़ाने वाला, प्रीति को बढ़ाने वाला। जिस भोजन के करने से छह बात की वृद्धि हुए वो सात्विक भोजन है। जैसे घी है ये आयु को बढ़ाता है, बहुत से पदार्थ आयु को बढ़ाने वाले, और सत्यमन अंतकरण को पुष्ट करने वाले, आयु सत्य बल को बढ़ाने वाले, आरोग्यता को बढ़ाने वाले। तो जितने पदार्थ हैं, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले जितने जो भोजन करने जो पदार्थ हैं, वे भोजन सात्विक है। छह प्रकार की वृद्धि करने वाला और चार प्रकार का भोजन, प्रत्याश निजा सिरा हिज्जा, कैसा भोजन होना चाहिए कि रस युक्त होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए चिकना होना चाहिए, और कैसा भोजन होना चाहिए कि जिसके परमाणु बहुत काल से रह गए, और कैसा होना चाहिए कि रुचिकर होना चाहिए। तो रस युक्त क्या, जैसे फल है, ऋषि लोग सात्विक भोजन करते थे, दूध और फल का सेवन करते थे। दूध जो है वो तो रस ही रस है, गोरस है, और फल जो है साक है, उनके में अधिक रस रहता है, वो सात्विक है। चिकना जैसे घी है, घी में भी गौ का घी सबसे बढ़कर है। घी को शब्दों की शास्त्रों में आयु कहा है, आयु को बढ़ाने वाला होने से। और सिर माने बहुत काल तक रहे, जैसे मेवा है, बादाम है, दाख है, चुहारी है, लोया है, पिस्ता है, ये सब जो है इनमें सत्व अधिक रहता है, विशेष समय तक ये रहता है। और रुचिकर ये किस प्रकार का, दस प्रकार का जो भोजन है वो सात्विक भोजन है और पवित्र, एक तो वस्तु से पवित्र हुए, जैसे फल है, दूध है, अन्न है, ये वस्तु से पवित्र, और एक उसको संस्कार करके पवित्र पवित्रता, और एक पवित्रता जो है न्याय से उपार्जन के जन्म से जो खरीदा जा रहा है वो भोजन पवित्र है। तो पवित्र और सात्विक भोजन होना चाहिए जिससे बुद्धि शुद्ध होती है, हर एक प्रकार से लाभ होता है। और शरीर से व्यायाम करनी चाहिए, जैसे आसन उचित व्यायाम, और जैसे शरीर से परिश्रम किया जाए अस्थियों के लिए, जैसे चाकी परिश्रमा परिश्रम है, और जैसे घूमना फिरना भी परिश्रम है, दंड कसरत भी परिश्रम है। तो योगी की जो कसरत आसन वगैरह की, ये सब करना जो है तो शारीरिक परिश्रम अपने लिए बहुत लाभदायक है। व्यायाम करके दूध पान करने में तो उसमें वो सभी चीज बढ़ती, और सबके साथ में पवित्र व्यवहार करना, अहंकार को और स्वार्थ को त्याग करके विनय और प्रेम से जो व्यवहार किया जाता है उत्तम दर्जे का व्यवहार होता है। वो व्यवहार की पवित्रता, आहार की पवित्रता, शोचाचार सदाचार, इससे शरीर की उन्नति होती है। इसी प्रकार से इंद्रियों की उन्नति करनी चाहिए। इंद्रियों के बाद जैसे वाणी है, मैं की उन्नति करनी चाहिए। शरीर की उन्नति के लिए भगवान ने सदाचार के विषय में एक बात और कही, गीता की 17वें अध्याय के 14वें श्लोक, उसके अनुसार अपना जीवन बिताना चाहिए। उस श्लोक इस प्रकार कहती है कि देव जिद गुरु प्राज्ञ पूजन सोचमार्जुन ब्रह्मचर्य अहिंसा से शारीरंग पूछते। ये जो चार हैं इनका आदर सत्कार करना ही पूजा है। देवता, ब्राह्मण, गुरुजन, माता पिता, आचार्य, और जो हमारे पद में बड़े हैं, अवस्था में बड़े हैं, वर्णाश्रम में बड़े हैं, गुणों में बड़े हैं, आचरण में बड़े हैं, उन सबको एक प्रकार से नमस्कार करना, सेवा करना, आदर सत्कार करना। ज्ञानवान जो महात्मा पुरुष है उनका आदर सत्कार करना, उनकी सेवा करना, एक बात तो ये। शौच मैंने आपको बताया है कि शौचाचार सदाचार, सबके साथ में अच्छा व्यवहार करना और पवित्रता से रहना। बाहर के मां एक प्रकार से घर को साफ रखना, शरीर को साफ रखना, वस्त्रों को साफ रखना, ये शौचाचार है, और उत्तम व्यवहार करना ये सदाचार है। आरजो माने सरलता, बांकापना नहीं, एक नहीं, जैसा भीतर का भाव ऐसा ही बाहर का व्यवहार, हृदय का जो भाव है वैसा ही आपने बाहर का व्यवहार, निष्कपट होकर सबके साथ में व्यवहार करना, और ब्रह्मचर्य का पालन करना, हर एक प्रकार से थी मेसुर का त्याग करना, पुरुषों के लिए स्त्री का त्याग करना, स्त्रियों के लिए पुरुषों का त्याग करना, परस्त्री को छूना नहीं, हाथों से छूना नहीं, नेत्रों से अस्थिर बुद्धि से कभी देखना नहीं, और वाणी से अश्लील बातें नहीं करनी, कानों से अश्लील बातें सुननी नहीं, और किसी स्त्री का स्मरण नहीं करना, अकेली स्त्री के पास एकांत में नहीं रहना, और हंसी मजाक नहीं करना, सहवास नहीं करना। इस प्रकार से थी समुद्र का जो त्याग है वो ब्रह्मचर्य का पालन। आठ प्रकार के मिथुनों का त्याग है वो ब्रह्मचर्य का पालन है, और अहिंसा, किसी की कभी किंचित मात्र भी हिंसा नहीं करना अहिंसा है। किसी की आत्मा को न दुख देना न दिलवाना, और कोई देता हो तो उसका समर्थन नहीं करना। कर्तकारित अनुमोदित हिंसा के तीन भेद है मुख्य। हिंसा करनी नहीं, करवानी नहीं, और करे उसके मन से मत नहीं होना। ये तीन प्रकार की हिंसा लोभ क्रोध और मोह से होती है। छुट्टियों के लोभ से थी, झूठ कपड़े चोरी बेईमानी आदि अनेक प्रकार के जो आश्रम से हिंसा होती है, और क्रोध से थी किसी का निष्कर डालता है, और ज्ञान से भी होती है। तो नौ प्रकार के उसके भेद हो जाते हैं। फिर नौ प्रकार की हिंसा मृदु, नौ प्रकार की मध्य, और नौ प्रकार की मंद मंद, मान मृदु मात्रा, मध्य मात्रा, अति मात्रा। थोड़ी जो हिंसा है किसी को, थोड़ी हिंसा थोड़ी चोट पहुंचाई वो मृदु हिंसा है, और अधिक चोट पहुंचाई तो मध्य मात्रा है, मध्य बीच की हिंसा है, और एकदम ज्ञान से मार डाला तो वो अति मात्रा है। नौ प्रकार की तो मध्य मात्रा वाली होती है, नौ प्रकार की मध्यम श्रेणी की, और नौ प्रकार की अति मात्रा वाली, तो 27 भेद हो। इस प्रकार की हिंसा किसी देश में नहीं कर रही। कोई कभी यू तो तीर्थ स्थान ध्यान नहीं कर रही, नहीं कभी नहीं कर रही, और किसी काल में नहीं करने के लिए आज एकादशी, आज तो नहीं करेंगे, नहीं किसी दिन भी नहीं करनी, और किसी दिन को लेकर के नहीं करनी। जो बात आपने बताई और उसकी आत्मा शुद्ध होती है, एक जो बड़े हैं उनका आदर सत्कार और सेवा नमस्कार ये करना एक बार, और सोचाचार सदाचार से रहना दूसरी बात, और सबके साथ में बहुत विनय से सरलता से व्यवहार करना तीसरी बात, और ब्रह्मचर्य का सर्वथा ब्रह्मचर्य का पालन करना चौथी बात, किसी प्रकार किसी की आत्मा को कष्ट नहीं देना या पांचवी बात। ये शरीर संबंधी तब है, अपने शरीर का धर्म है, और ये आपने सुन लो कि इस विषय की जितनी अधिक चेष्टा है उतनी शारीरिक विषय या शारीरिक उन्नति है, ऐसे ही इंद्रियों की उन्नति, वाणी की उन्नति। वाणी के लिए भगवान ने गीता की 17वीं अध्याय के 15 के श्लोक में बताया, अनुग्रह करम वाक्यम सत्यम प्रियम से स्वाध्याया प्रसन्न से वांग में उत्तर पूछते, ऐसा वचन बोलना जिससे किसी को उद्वेग न हुए, और कैसा वचन हुए कि वो सत्य और प्रिय और हितका हो। और वाणी का तब क्या है कि भक्ति ज्ञान वैराग्य विषय के जो शास्त्र है उनका अनुशीलन करना, उनका स्वाध्याय का अभ्यास करना, रोज उसका अध्ययन करना का नाम स्वाध्याय है, और उसका अभ्यास करना। तो इसमें भी 5 बात है वाणी के तब में भी, इस प्रकार से करने से उसकी वाणी के द्वारा पाप सब नष्ट हो जाते हैं, और उस वाणी से जो कुछ कह देता है वो सत्य हो जाता है। सत प्रतिष्ठा क्रिया फला से तुम मैं श्री पतंजलि पाता हूँ लोग दस के दूसरे पाप में ये बात बताए। इसका मतलब यह होता है कि ऐसा सत्यवादी पुरुष वाणी से जो भी कुछ कह देता है उसका वचन सत्य हो जाता है। वो किसी को श्राप दे दे रहे तो उसका श्राप लग जाता है, आशीर्वाद दे तो आशीर्वाद लग जाता है, और किसी को वर दे रहे तो वर लग जाता है। ऐसी बातें हमारे शास्त्रों के वहाँ बहुत आती है। अमुक ऋषि ने अमुक को श्राप दे दिया, अमुक ने उसको वरदान दे दिया और वो सोलह न हो सत्य। इतना ही नहीं, सबका बड़ा महात्म है। सत्य बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप, जान के हृदय साथ है ताकि हृदय आप। सत्य के समान कोई तप नहीं है, झूठ के समान कोई पाप नहीं है, और जिसके हृदय में सत्य विराजमान है उसके हृदय में भगवान विराजमान। और उद्वेग कारक जो वचन है ये बाण की माप लगते हैं। जो मनुष्य उद्वेग का वचन बोलता है दूसरे की आत्मा को दिखलाता है तो ऐसा वचन कभी नहीं बोलना चाहिए। और कैसा सत्य होकर के भी प्रिय होना चाहिए, अप्रिय नहीं होना चाहिए। कोई भाई खड़ा है और उसका बाप आया तो ये प्रिय वचन है कि आपके पिताजी पधारे हैं, और ये कह कि तेरी माँ का कसम आया बात तो सच्ची है पर अप्रिय दोनों बोलना। दूसरी बात यह आई कि सत्य बोलना, तीसरी बात यह आई कि प्रिय बोलना, चौथी बात यह आई कि हितकर हो ऐसा वचन बोलना, पांचवी बात यह कि वाणी के द्वारा स्वाध्याय करो। श्रुति स्मृति इतिहास पुराण आदि जो ग्रंथ है उन भक्ति ज्ञान वैराग और सदाचार की बात लिखी है, उसे का अभ्यास करना, उसका अध्ययन और अध्ययन का अभ्यास, उसका नाम स्वाध्याय रचना चाहिए। ये पांचवी बात पर परमात्मा की प्राप्ति में सहायक है और उसे पाप से नाश है। ये वाणी का तप है, वाणी की उन्नति है। ऐसी और भी सब हमारी इंद्रिया है उसकी उन्नति करनी चाहिए। हाथों की जो उन्नति है सेवा करने से, दूसरों की सेवा करनी चाहिए हाथों से। हाथों से दान देना, यज्ञ करना, परोपकार करना, इससे हाथ हमारे पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार से थी हमारे कानों की उन्नति करनी, कान से थी जो है भगवान के गुण प्रभाव तत्व रहस्य की बात सुननी, भगवान के नाम रूप की बात सुननी, भक्ति ज्ञान वैराग की बात सुननी, तो इसे कान पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। जिसको संसार का हित तो ऐसी बातें सुननी, तो इसी प्रकार से थी मंदिर में जाना इत्यादि से अपने पैरों से काम लेने से पैर ऐसो पवित्र हो जाते हैं। ये पैरों की एक प्रकार से पवित्रता है, उन्नति है। ऐसे जो जितनी इंद्रियां हैं इन सब को अपने साधन में लगा देना, ये इंद्रियों के विषय की उन्नति है। ऐसे ही मन के विषय की मानसिक उन्नति, मानसिक उन्नति के विषय में भगवान ने गीता की सत्रहवें अध्याय के सोलह के श्लोक में बताया कि मन प्रसाद सोमे तुम मन मात्र निग्रह भाव संस्कृत तत्व मानस मुच्यति। इसमें भी पांच बात कही, मन प्रसाद माने मन को खुश रखना हर वक्त। प्रसाद ईश्वर की दया के नाम का भी प्रसाद है और अंतकरण की शुद्धि का नाम भी प्रसाद है और भगवान के जो भोग लगा करके बच्चे वो भी प्रसाद है। इसके भी एक प्रकार से थी अपने दुखों का नाश करने वाले परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले हैं। प्रसादेश्वर दुख का नाम हानि रस के बजाय प्रसन्न चेत बुद्धि पर्यवती स्थिति प्रसाद से सारे दुखों की हानि हो जाती है और चित्त प्रसन्न हो जाता है। उस सात्विक प्रसन्नता से थी साधक की बुद्धि उस परमात्मा के रूप में अचल स्थिर हो जाती है। तो यहाँ प्रसाद का अर्थ मन की प्रसन्नता है। दीदी कहो कि हम अंतःकरण की शुद्धि लेने से क्या आपत्ति। अंतःकरण की शुद्धि इसलिए नहीं ले सकते हैं, भाव संशुद्धि शब्द इसी श्लोक में आगे पड़ा है, उन रूपी का दोष आएगा। तो अंतःकरण की प्रसन्नता सात्विक प्रसन्नता उस सात्विक प्रसन्नता ले लेते हैं और सौम्य भाव जैसे चंद्रमा सौम्य है इस प्रकार मन का शीतल और सौम्य भाव है। मन का देवता भी चंद्रमा है इसलिए अपने देवता के समान मन को बनाना और मन का निग्रह, निग्रह माने मन को कंट्रोल में करना, अपने वश में करना, उसके लिए भगवान ने अभ्यास और वैराग बताए इसका उपाय। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो साधन बताए उसका अभ्यास करना, प्रयत्न करना, साधन के लिए प्रयत्न करना यह अभ्यास है और संसार से वैराग करना, स्त्री पुत्र धन रुपया शरीर मान बढ़ाई प्रतिष्ठा इनके मन जो प्रीति है उसका जो अभाव है, प्रीति का नाम राग है, राग का जो अभाव वैराग, तो इन सब के बीच के मां वैराग करना स्थिति मन सो भस्म हो जाता है। तो मन को भस्म करना ये मानसिक उन्नति है और हृदय की जो पवित्रता है मन का जो शुद्ध करना, मन के भीतर के बीच के मां दुर्गुण और दुराचारों के संस्कार भरे हुए हैं उनको एकदम साफ कर देना, ये मन की शुद्धि है। चित्त शुद्धि के लिए हमारे शास्त्रों में बहुत से उपाय बताए हैं, निष्काम जो कर्म है, सेवा आदि, जगदान, तप और परोपकार आदि जो है निष्काम भाव से करने से अंतःकरण शुद्ध होता है और निष्काम भाव से उपासना करने पर भगवान के नाम का जप करने से और भी अंतःकरण शीघ्र शुद्ध हो जाता है। शुद्धि से मल विक्षेप आवरण तीनों का नाश लो तो ध्यान करने से अंतःकरण अपना एकाग्र हो जाता है, वैराग से अंतःकरण एकाग्र हो जाता है और सत्पुरुषों का संग और सत्संग संग करके उनका जो अध्ययन करे, उनके अर्थ और भाव को समझे, उससे ज्ञान की वृद्धि होकर के आवरण का नाश हो जाता है। तो यहाँ एक प्रकार से अंतःकरण की समग्र प्रकार की शुद्धि लिखी है, इसलिए एक प्रकार से हृदय के बीच में जो दुर्गुण और दुराचारों के जो संस्कार है, दुर्व्यसन जो उनके संस्कार है, इनको साफ करना यह बात तो प्रधान है ही और विक्षेप आदि का नाश करना भी उसका अंग मान लेना तो और भी अच्छी बात है। हर एक प्रकार से अपने चित्त को शुद्ध करना, मन के पवित्र होने से लौकिक सिद्धि तो स्वाभाविक है, वो जो मन में संकल्प करे वो सिद्ध हो जाता है। जैसे वाणी के तप से थी किसी को श्राप और वरदान दे देता है वो सत्य हो जाता है, ऐसे मन की पवित्रता से, मन के शुद्ध होने से, मन के तप करने से मन का जो संकल्प है वो सिद्ध हो जाता है। विशेष लाभ तो वो है कि उस अंतःकरण शुद्ध होकर के परमात्मा की प्राप्ति उसको हो जाती है और परमात्मा की प्राप्ति के लायक बन जाता है, फिर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो इसलिए अपने मानसिक उन्नति करनी चाहिए, मन विषय की उन्नति है वो मानसिक उन्नति है और बौद्धिक उन्नति है वो बुद्धि के विषय की उन्नति है। बुद्धि की उन्नति के लिए भगवान ने बताया गीता की 8वें अध्याय के 30वें श्लोक में, प्रवृत्ति से निवृत्ति से कार्य कार्य भया भय बंधन मोक्ष से या वृत्ति बुद्धि से अपार्थ सात्विक। सात्विक जो बुद्धि है वो कल्याण करने वाली है, राष्ट्रीय और तामसी बुद्धि पतन करने वाली है, इसे राष्ट्रीय और तामसी बुद्धि का सुधार करके अपनी बुद्धि को सात्विक बनाना चाहिए। ये 8 बात को जानने वाली जो बुद्धि है वो सात्विक बुद्धि बताई गई है। प्रवृत्ति जो मार्ग है इसको और निवृत्ति मार्ग को, प्रवृत्ति में रह करके घृष्टासन में रह करके किस प्रकार से आत्मा का कल्याण हो सके और संन्यास आसन में रह करके किस प्रकार से आत्मा का कल्याण हो सके, इस दोनों ही मार्गों को जाने। और घर में रह करके भी एक प्रकार से थी प्रवृत्ति नहीं है और संन्यास में रह करके भी प्रवृत्ति होती है, उसको भी समझना चाहिए। और स्वार्थ को लेकर के होने वाली क्रिया है वो प्रवृत्ति दुगोने वाली है, और स्वार्थ रहित जो क्रिया है वो कल्याण करने वाली है, परमार्थ को लेकर के क्रिया होती है वो कल्याण करने वाली होती है। शंकाधिकों का जो मार्ग है वो निवृत्ति मार्ग है और राजा जनकादि का मार्ग है वो प्रवृत्ति मार्ग है। तो राजा जनक के घृष्ट में रह करके प्रवृत्ति मार्ग में रह करके और परम गति को प्राप्त हुई। कर्मणा संसिद्धि मासिदा जनकादि, जनकादि जो हुए कर्मों के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुई। तो प्रवृत्ति मार्ग को भी समझना चाहिए, निवृत्ति मार्ग को भी समझना चाहिए। जो इन दोनों मार्गों को अच्छी प्रकार से जानता है जिस बुद्धि से, वो बुद्धि सात्विक है। और कार्य कार्य, कार्य मान कर्तव्य और अकार्य मान अकर्तव्य, जो फालतू कर्म है, व्यर्थ कर्म है और पाप कर्म है, उसको समझ करके उनका त्याग करना चाहिए, उससे रहित होना चाहिए। और जो उत्तम जो कर्म है, यज्ञ दान तप सेवा, इनको समझ करके इसका निष्काम भाव से संपादन करना चाहिए, बुद्धि से समझना चाहिए कि ये त्याग करने के योग है और ये ग्रहण करने के योग है। भय और अभय तो उसको यमराज से भी भय नहीं है, उसकी मृत्यु होती है पाप से, जो पाप नहीं करता उसकी मृत्यु नहीं होती। तो भाई और द्रौपदी देवी स्वर्ग के लिए भीमसेन ने पूछा कि धृष्टसेन की आप कहते हैं कि बिना पाप के मृत्यु नहीं होती, तो द्रौपदी पति बरसाती और सबकी सेवा करती थी, फिर इसकी मृत्यु कैसे हो गई, इसने तो कोई पाप किया हो ऐसी बात भी याद नहीं है।